इतना प्यारा शिव बाबा का दरबार है, सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है।
कितना प्यारा शिव बाबा का दरबार है, सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है।
माता पिता भाई बहनों का,
माता पिता भाई बहनों का सुंदर सा संसार।
इतना प्यारा शिव बाबा का दरबार है, सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है।
तो कितना प्यारा शिव बाबा का दरबार है, सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है।
परम पिता शिव भगवान और ब्रह्मा बाबा माली, स्नेह शांति सुख की फैली है हरियाली खुशहाली।
परम पिता शिव भगवान और ब्रह्मा बाबा माली, स्नेह शांति सुख की फैली है हरियाली खुशहाली।
रूहानी रौनक से गुलशन
ये तो गुलों गुलजार।
कितना प्यारा शिव बाबा का दरबार है, सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है।
बाबा सूरज मम्मा चंदा बच्चे ज्ञान सितारे, जग को रोशन करने वाले ये दो नयन हमारे।
ओ बाबा सूरज मम्मा चंदा बच्चे ज्ञान सितारे, जग को रोशन करने वाले ये दो नयन हमारे।
हम उन पे बलिहार हुए हैं,
हम उन पे बलिहार हुए हैं, वो हम पे बलिहार।
कितना प्यारा शिव बाबा का दरबार है, सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है। कितना प्यारा शिव बाबा का दरबार है, सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है।
शांति। शिव बाबा का ये परिवार कितना न्यारा और कितना प्यारा है, जिसकी विशेषताएं भी न्यारी प्यारी हैं, नियम मर्यादाएं भी न्यारी प्यारी हैं, धारणाएं भी यूनिक हैं, कर्तव्य भी न्यारे प्यारे हैं, हर एक चीज यूनिक है। और ये परिवार ऐसा परिवार है जो पूरे संसार को परिवर्तन करने में भगवान की मदद करता है। संसार में सभी जितने भी परिवार हैं, भले वो संगठित रूप से कई संस्थाएं भी अपने आप को परिवार कहलाती हैं, लेकिन वो भगवान की मददगार बनने के बजाय भगवान से मदद मांगते हैं वो। लेकिन यहाँ बाबा हमको मददगार बनाते हैं अपना। तो इस परिवार की विशेषताएं भी अलग हैं, विचित्र हैं, अनोखी हैं, न्यारी प्यारी हैं। लेकिन उन विशेषताओं को अर्जित करने के लिए, उन प्रभु प्यार की योग्यताओं को स्वयं में समाहित करने के लिए, उतना कदम कदम पर अटेंशन भी बहुत जरूरी है। बाबा की शिक्षाएं इतनी गहरी हैं, इतना मन को भेद देने वाली हैं, अगर उन शिक्षाओं को हम गहराई से पढ़ते हैं, देखते हैं, उन पर चिंतन चलता है, तो पुरुषार्थ की गति धीरे धीरे बढ़ती है, तीव्र होती है। तो आज हम प्रभु परिवार की श्रृंखला के 21वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं और इसमें हम 21 बातें देखेंगे कि कौन कौन सी बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए। वो हैं भी, लेकिन कैसे उन धारणाओं को निखारा जाए, वो धारणाएं कैसे हमारे जीवन में शक्तिशाली बने। तो उससे पहले जो बाबा के महावाक्य हैं, मुरली है 27 मई 74। तो वास्तव में ये जो किताब पढ़ रहे हैं प्रभु परिवार, इसमें छोटे छोटे पैराग्राफ हैं, लेकिन पैराग्राफ की बजाय अगर उस डेट की मुरली पढ़ी जाए तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कुछ करने के लिए मन में एक चोट पहुंचाती हैं। इसलिए पूरी मुरली भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटा सा पैरा पढ़ा, जब हमने वो मुरली पढ़ी जो उसके आगे था पैरा, वो उसमें इसमें इंक्लूड नहीं किया गया इस ब्राह्मण परिवार की किताब में, जबकि वो इंक्लूड होना चाहिए था। इसलिए मुरली पूरी पढ़ना बहुत जरूरी होती है, लेकिन फिर भी हम उस पैरे से कनेक्टेड जो महावाक्य हैं बाबा के, तो बाबा कह रहे हैं अब संपूर्ण स्थिति की स्टेज व संपूर्ण परिणाम का समय नजदीक आ रहा है। रिजल्ट आउट बाप दादा मुख द्वारा नहीं करेंगे, कोई कागज व बोर्ड पर नंबर नहीं लिखेंगे, लेकिन रिजल्ट आउट कैसे होगी, आप स्वयं ही स्वयं को अपनी योग्यताओं प्रमाण अपने अपने निश्चित नंबर के योग्य समझेंगे और सिद्ध करेंगे। ऑटोमेटिकली उनके मुख से स्वयं के प्रति फाइनल रिजल्ट के नंबर ना सोचते हुए भी उनके मुख से सुनाई देंगे और चलन से दिखाई देंगे। अब तक तो रायल पुरुषार्थियों की रायल भाषा चलती है, लेकिन थोड़े समय में रायल भाषा रियल हो जाएगी। जैसे कि क्लब पहले का गायन है रायल पुरुषार्थियों का, कितना भी स्वयं को बनाने का पुरुषार्थ करें, लेकिन सत्यता रूपी दर्पण के आगे रायल भी रियल दिखाई देगा। तो आगे चलकर ऐसे सत्य बोल, सत्य वृत्ति, सत्य दृष्टि, सत्य वायुमंडल वातावरण और सत्य का संगठन प्रसिद्ध दिखाई देगा, अर्थात ब्राह्मण परिवार एक शीश महल बन जाएगा। ऐसी फाइनल रिजल्ट ऑटोमेटिकली आउट होगी। अभी तो बड़े बड़े दाग भी छुपाने से छिप जाते हैं, क्योंकि अभी शीश महल नहीं बना है, जो कि चारों ओर के दाग स्पष्ट दिखाई दे जावे। जब किनारा कर लेते तो दाग छिप जाता, अर्थात पाप दर्पण के आगे स्वयं को लाने से किनारा कर जाते हैं, किनारा कर छिप जाते हैं। बाप भी बच्चों का कल्याणकारी बन अनजान बन जाते हैं, जैसे कि जानते ही नहीं। अगर बाप कह दें कि मैं जानता हूं कि ये दाग इतने समय से बा इस रूप से है, तो सुनाने वाले का क्या स्वरूप होगा। सुनाना चाहते भी मुख बंद हो जाएगा, क्योंकि सुनाने की विधि रखी हुई है। बाप जबकि जानते भी हैं तो भी सुनते क्यों हैं, क्योंकि स्वयं द्वारा किए गए कर्म व संकल्प स्वयं वर्णन करेंगे तो ही महसूसता की सीढ़ी पर पांव रख सकेंगे। महसूस करना या अफसोस करना या माफी लेना बात एक हो जाती है, इसलिए सुनाने की अर्थात स्वयं को हल्का बनाने की या परिवर्तन करने की विधि बनाई गई है। इस विधि से पापों की वृद्धि कम हो जाती है। इसलिए अगर शीश महल बनने के बाद स्वयं को स्पष्ट देखकर स्पष्ट किया तो रिजल्ट क्या होगी, ये जानते हो। बाप दादा भी ड्रामा प्रमाण उन आत्माओं को स्पष्ट चैलेंज देंगे तो फिर क्या कर सकेंगे। इसलिए जब महसूसता के आधार पर स्पष्ट हो, अर्थात बोझ से स्वयं को हल्का करो, तब ही डबल राइट रूप स्वरूप अर्थात फरिश्ता व आत्मिक स्थिति स्वरूप बन सकेंगे। तो ये हमारी जो संपूर्ण स्टेज बाबा ने कहा, फरिश्ता व फरिश्ता स्वरूप व आत्मिक स्थिति की स्टेज, ये हमारी अंतिम स्टेज है जो नेचुरल नेचर हो जाएगी। कि चलते फिरते वो हमें जो अभ्यास करना पड़ता है, मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ, ये नेचुरल नेचर बन जाएगा। फरिश्ता सोचना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो महसूस होगा। लेकिन उस मंजिल तक पहुँचने के लिए बहुत सारी बातें हैं। तो इसमें बाबा ने जो हमको बताया कि सत्य बोल जो धारणा की बात है, सत्य वृत्ति, सत्य दृष्टि, सत्य वायुमंडल वातावरण और संगठन, तो ये पहली धारणा है हमारे जीवन की सत्यता। कहा जाता है संसार में सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। इस सत्य पथ पर चलने के लिए परेशानियों की अनेक प्रकार के तूफान आएंगे, लेकिन अगर हम उस पर अडिग रहते हैं तो तूफानों में परेशानियां तो पैदा होंगी लेकिन वो हमको पराजित नहीं कर पाएंगी। क्योंकि कहा जाता है सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, क्योंकि स्वयं सत्य हमारे साथ में है, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। उस सत्य ने हमारा दामन थामा है और हमने भी उसका दामन थामा है। उसकी कंपनी में हमारा जीवन यापन हो रहा है, उसकी कंपनी में हम अपना जीवन की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए सत्य पथ पर चलने के लिए बहुत साहस, हिम्मत, हौसला, बहादुरी चाहिए। वो तब रहेगी जब हम उसकी कंपनी में रहेंगे, उसका साथ रहेगा, उसकी छत्रछाया में रहेंगे। और सत्य में ताकत है। एक कहावत ये भी है संसार में, कहा जाता है सत्यों को और पानी को जितना दबाया जाए वो उतना ही शक्ति से बाहर आता है, उसको रोक नहीं सकता कोई भी। संसार में भी देखा होगा भ्रष्टाचार करने वाले सत्य को दबाने की कोशिश करते हैं तो वो उतना फोर्स से बाहर निकलता है, उतना उसका विस्तार होता है। उसी तरह से इस ब्राह्मण जीवन में भी अगर हम सत्यता को छिपाना चाहते हैं, अर्थात जो हमारे में कमी कमजोरियां हैं, जो दाग हैं, जो बाबा ने कहा कि अभी तो दाग छिप जाते हैं लेकिन समय आने पर जो रियल है, जिसको हम अभी रायल रूप से चला रहे हैं, वो स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष होगा। जब सत्यता का दर्पण हमारे सामने आएगा तो दर्पण कभी झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन अभी हम दर्पण की तरफ पीठ कर लेते हैं इसलिए सत्य छिप जाता है। और वो सत्य छिपते 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 हमें हमारे अंदर को खोखला कर देता है। क्योंकि सत्य तो सत्य रहेगा, इसलिए सत्यता के सूर्य को असत्यता के बादल छिपा नहीं सकते, सत्य सत्य रहेगा जितना मर्जी छिपाने की कोशिश करें। इसलिए इस पुरुषार्थ मार्ग में सच्चाई सफाई बहुत अनिवार्य है। अगर हमारे जीवन में पुरुषार्थ में सच्चाई सफाई नहीं है, दिखावे का पुरुषार्थ है या ऊपर ऊपर से हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो भी वो लंबे समय तक चल नहीं पाएगा। उसका जो आंतरिक सुख मिलना चाहिए, जो मन गवाही दे हमारी कि हाँ पुरुषार्थ की पटरी पर ठीक से हम दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, जो सार्थक परिणाम मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। इसलिए आज बाबा ने किसको याद किया, गरीब बच्चों को, कि उनकी समझदारी है, स्यानप है, ये वो कौड़ियों के बदले अपना जो ठिकर ठोबर है वो सब कौड़ियों और ठिकर ठोबर देकर क्या प्राप्त कर लेते हैं, हीरे प्राप्त कर लेते हैं, बाप उन पर बहुत खुश होते हैं। तो सच्चाई सफाई चाहिए, सच्चाई सफाई सादगी, जो दादी जी के तीन महामंत्र हैं। तो संपूर्णता की इस स्टेज पर अग्रसर होने के लिए हमें अपने जीवन में देखना होगा कि इस यात्रा में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको अगर हम अप्लाई करते हैं जो हमारी पुरुषार्थ की गति तेज हो जाए, जो जीवन में दाग हैं अनेक प्रकार के, कई जन्म जन्मांतर के दाग हैं। जो बाबा ने एक मुरली में भी कहा था कि ब्राह्मणों की ड्रेस रक्तरंजित ड्रेस भी होती है, देवान की ड्रेस बदबू वाली ड्रेस, खून के दाग धब्बे वाली ड्रेस। तो कई प्रकार के दाग धब्बे अगर हमारे अंदर में हैं अभी, जो चित्त पर अंकित हैं, उनको कैसे हमें साफ करना है, इसलिए चेक और चेंज, कदम कदम पर स्वयं पर बारीक नज़र रखनी पड़ेगी। सूक्ष्म से सूक्ष्म बहुत सारी बातों से किनारा करना पड़ेगा, स्वयं को समय देना पड़ेगा, तो ही हम इस मंजिल पर संपूर्णता की स्टेज पर पहुंच सकते हैं। और वो जो संपूर्णता की स्टेज आज के महावाक्य के अनुसार फरिश्ता स्टेज, आत्मिक स्थिति की नेचुरल नेचर, जो ऑटोमेटिकली हो जाए, जो हमको प्रयास ना करना पड़े बल्कि वो सहज हो जाए, नेचुरल नेचर बन जाए, तो उसके लिए हम ये 21 बातें देखेंगे। सबसे पहले तो है ये अंडरस्टैंडिंग, समझदारी भी चाहिए हर बात की। जो बाबा ने आज जैसे कहा, पहले जिक्र किया कि गरीब बच्चों के ऊपर बाप बहुत खुश होते हैं। क्यों? जो भी हमारे अंदर कमी कमजोरियां हैं या जो भी हमारे पास में है वो सारा सफर कर लेते हैं गरीब बच्चे, इसलिए बाबा गरीब बच्चों का गायन करते हैं। गरीब निवास बाप गरीब बच्चों पर बहुत खुश होते हैं क्योंकि जो भी उनके पास में है वो सच्चाई सफाई से बाप के आगे अपना सारा कुछ रख देते हैं, इसलिए बाबा कहते बा गरीबी बा जो बाप से मिला दिया। बाबा के महावाक्य हैं, संगम पर गरीब बनना सबसे बड़ा भाग्य है। ये भाग्य कोटों में कोई कोई नसीब होता है, तो गरीब और इस अगर बाबा में देखा जाए, बाबा भी कई बार साकार महावाक्यों में कहते हैं मुरलियों में कि करोड़ दो करोड़ है वो भी गरीब ही हैं, उस सतयोगी संपत्ति के आगे करोड़ों पति भी क्या है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हर बात की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, समझदारी चाहिए, ताकि हम पुरुषार्थ की डगर पर ठीक से हम यात्रा कर सकें। तो गरीब बच्चों को बाबा ने आज याद किया कि बहुत खुश होते हैं बाबा उनके ऊपर, तो हमें देखना है कि सचमुच बाबा हमारे पर भी खुश है या हम किसी कोई और कोई गरीब समझते हैं अपने को साहूकार। तो गरीबी वास्तव में किस चीज़ की है? एक तो धन की गरीबी नहीं है, दूसरा है चरित्र की गरीबी होती है। तो चरित्र से गरीब तो नहीं है कहीं, हम चरित्रवान बनना है, जो हमारे चित्र से चलन से वो चरित्र दिखाई दे। इतने लंबे समय से हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, ज्ञान का रसपान कर रहे हैं, बाबा की महावाक्यों का अनुसरण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो वो हमारे चरित्र में समा जाने चाहिए, चित्र में भी समा जाने चाहिए, अर्थात वो सारा कर्मेंद्रियों से झलकना चाहिए वो सारा ज्ञान। तो हर बात की अंडरस्टैंडिंग, गौर करना उस पर, समझना है उसको। नेक्स्ट है जो हमको समय का खजाना मिला है, ये टाइम, समय सबसे बड़ा धन है, संपत्ति है, ये हमारे हाथ से ऐसे ना निकल जाए। सारे दिन में बहुत सारा ऐसा समय होता है, अगर हम गहराई से अपनी जांच करते हैं, चेकिंग करते हैं, तो बहुत सारा समय रूपी धन हमारे हाथ से निकल जाता है। और उसका परिणाम, उसकी रिजल्ट क्या होती है? अगर ऐसे बेस वो चला गया तो गिल्ट कॉन्शियस, आत्म ग्लानि का भाव स्वयं के मन के अंदर होता है और वो हमारी खुशी को छीन लेता है। तो समय रूपी खजाना हम सबको बहुत, ये अभी अनमोल समय मिला हुआ है, वैल्यूएबल टाइम चल रहा है, तो इस समय रूपी संपत्ति हमारे हाथ से ना निकल जाए, इसलिए इस खजाने का भी हमको पूर्ण रूप से सदुपयोग करना है इसका। एक एक सेकंड बाबा कहते हैं एक वर्ष के समान है, तो कितने सेकंड हमारे दिन में ऐसे चले जाते होंगे, जाते भी हैं। फिर भी कदम कदम पर हमको अटेंशन रखे, बार बार जांच करनी है, अटेंशन रखना है, तो समय रूपी खजाना भी हमको सफल करना है। नेक्स्ट है एस। इस ब्राह्मण जीवन में बहुत सारी बातें ऐसे जीवन में आएंगी जो हमारे मन को हलचल में लाएंगी, इसलिए जैसे बाबा साक्षीपन की स्टेज पर हमेशा स्थित रहते हैं, तो हमें भी उस स्टेज पर स्थित रहकर इस ड्रामा का आनंद लेना है। साक्षी दृष्टा है, अपनी भी साक्षी दृष्टा स्टेज पर स्थित होकर स्वयं के पुरुषार्थ पर भी नजर रखनी है कि कहाँ कहाँ वो रुकावट है, सो साक्षियों के स्वयं को भी साकाश देना है। तो इस दादी जानकी जी भी कहते हैं मैं स्वयं को भी साकाश देती हूँ। तो हम जैसे दूसरों को, प्रकृति को, आत्माओं को साकाश देते हैं, तो स्वयं को भी साक्षी होकर स्वयं की जांच करनी है और स्वयं को भी अच्छी तरह से साकाश देना है। जैसे प्रकृति के तत्वों को चार्ज करते हैं, ऐसे स्वयं की कर्मेंद्रियों को भी परमात्म शक्तियों से चार्ज करना है, साकाश देनी है, ताकि ये सारी कर्मेंद्रियाँ भी हमारी संपूर्ण रूप से सहयोगी बन जाएं। तो निरंतर जब भी हमको मौका मिले मन बुद्धि को बिजी रखने के, बहुत सारे हमारे पास ऐसे सूत्र हैं जो हम मन बुद्धि को बिजी रखते हैं। तो नेक्स्ट है स्वयं को साक्षियों के साकाश देने में बिजी रहना है। नेक्स्ट है आर। आर अर्थात रियलिटी, जो मुरली में बताया बाबा ने, सत्यता। उस सत्यता की शक्ति पर हम कितना खरा उतर रहे हैं, जो हमारा वास्तविक रूप है। संसार में कहा जाता है, कहा भी जाता है, और सब जो ज्ञान से परिचित नहीं है वो भी इस बात को मानते हैं कि देह विनाशी है और आत्मा विनाशी है। तो सारा दिन जो अगर हम देह की स्मृति में रहते हैं, अर्थात हमने झूठ को पकड़ा हुआ है, रियलिटी से दूर हैं हम, तो जो हमारी रियल स्थिति है, रियलिटी है कि मैं सचमुच एक सितारा हूँ, इस देह को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूँ, आत्मा हूँ, ये लंबे समय की उसकी अनुभूति चाहिए, तो हम उस सत्यम शिवम सुंदरम की समीपता का अनुभव करेंगे। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, तो हम सारे दिन में सत्यता के कितना करीब रहते हैं, क्योंकि जिसके जीवन में अगर सत्यता है तो बहुत सारे गुण उसके पीछे आकर्षित होते हैं। सत्यता जैसे एक चुंबक की तरह है जिसके पीछे सभी गुण अपने आप आकर्षित होते हैं। जो व्यक्ति सत्यवादी होगा वो जीवन में हमेशा सच्चाई सफाई से आगे चलेगा और किसी बात से डरेगा नहीं। डर कहाँ पैदा होता है, जब हम असत्य का सहारा लेते हैं। अगर एक बात भी हमने झूठ बोली तो उसके पीछे झूठ का जैसे एक कड़ी, एक श्रृंखला बन जाती है, और फिर वहाँ क्या होता है, घबराहट होती है, बेचैनी, घबराहट और परेशान, डिप्रेशन, झूठ पर झूठ, कितनी लंबा एक श्रृंखला बन जाती है और उसमें हमारा कितना टाइम चला जाता है, और अंदर ही अंदर वो सारा झूठ हमारी कर्मेंद्रियों में समा जाता है, और एक बार अगर वो संस्कार बन गया है तो फिर वो संस्कार अपने आप काम करता है, और फिर उसका क्या होगा, जो बाबा कहते हैं सत्यता का दर्पण जब हमारे सामने रखा जाएगा तो वो सारे असत्यता के जितने भी हमने बहाने बनाए हैं वो सारे सामने आएंगे, और असत्यता के साथ क्या होता है, हमारे जीवन की खुशी चली जाती है। एक झूठ बोला तो अंदर में क्या होगा, वो सारे झूठ के जो वाइब्रेशन है, नेगेटिव वाइब्रेशन, व्यर्थ के वाइब्रेशन, वो हमारे अंदर समा जाएंगे, और वास्तव में वो झूठ बोलने से ऐसा नहीं कि सामने वाले को पता नहीं चलता है, हम सामने वाले के सामने छिप तो जाते हैं, अपने झूठ को छिपा तो लेते हैं, लेकिन सामने वाले को भी पता होता है, और छिपते छिपाते छिपाते हम खुद ही छिप जाते हैं इस संसार से, ब्राह्मण संसार से, और बहुत सारी कमी कमजोरियां हमारे अंदर, हमारे खून में जैसे चली जाती हैं वो, यानी एक आंतरिक खुशी नहीं रहेगी, बनावटी खुशी तो रहेगी, लेकिन बाबा से जो एक समीपता का संबंध, ब्राह्मण परिवार से जो दुआएं मिलनी चाहिए, ब्राह्मण परिवार से जो समीपता होनी चाहिए, वो सारी खुशी नष्ट हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं जो सत्य है वो कभी घबराएगा नहीं, गंभीर रहेगा, गहराई में जाएगा। कहा जाता है ना, सच तो बिठो नच, है ना, जो सत्य है वो हमेशा नाचता रहेगा, खुश रहेगा हमेशा, और खुशी तो हमारे ब्राह्मण जीवन का सार है, परिणाम है ये। तो अगर हमारी खुशी में कमी है तो कहीं ना कहीं हम स्वयं से सत्य नहीं है, स्वयं ही हमने झूठ का दामन थाम के रखा है। तो सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि हमें देह की स्मृति रहती है, हम जो हैं वो तो हम उस स्थिति पर स्थित नहीं हो रहे हैं, है ना। आत्मा सत्चित आनंद स्वरूप है, जैसे बाबा सत्चित आनंद स्वरूप है, तो हम आत्मा भी उस स्वरूप में सारे दिन में कितना स्थित हो पाते हैं। पूरा दिन बॉडी की किस स्मृति रहती है, बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं, देह के संबंधों की स्मृति, जैसे आज बाबा ने बोला भले देहदारियों से सुनो, लेकिन क्या करो, आज की साकार मुरली में सुनो भले देहदारियों से लेकिन याद विदेही को करो। तो है रहना तो हमको सारे दिन में संबंध संपर्क में, देहदारियों के संबंध संपर्क में रहते हैं, लेकिन हमारी स्मृति जो स्मृतियां जो हमारी याद है वो विदेही की तरफ आकर्षित हो, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं सारे दिन में क्या होता है, कौन से संबंध किसके संबंध में आते हैं, काका चाचा मामा, ये सब संबंध संपर्क में आएंगे, सुनना तो पड़ेगा उनसे, लेकिन याद विदेही बाप को करो। बाप को भूल जाते, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती है, बाबा कितने माँ बाप के हैं। तो सच में अगर मुरली हम व्यक्तिगत तौर पर पढ़ते हैं ना, तो जैसे दिल को ठेस पहुंचती है वो, कि सच मुझे हमको शर्म नहीं आती है, वो अपने आप से लगते हैं, नहीं तो सुनने सुनाने तक सीमित रह जाते हैं। इसलिए व्यक्तिगत रूप से मुरली पढ़नी चाहिए, एक बार नहीं, बार 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 बार, तो वो धीरे धीरे वो महावाक्य हमारी कर्मेंद्र में समा जाएंगे। तो ये था, कहाँ पहुंचे थे, रियलिटी सत्यता, वो सत्यता की स्थिति पर स्थित रहना है, अर्थात वो आत्म स्थिति, जो हम सत्य हैं, जो हमारा सत्य स्वरूप है, जो सत्य धाम है, जो सत्ययुग है, जो हमारे अनादि लक्षण हैं, अनादि स्वभाव हैं, अनादि संस्कार हैं। जैसे संडे की मुरली में बाबा ने बताया था ना, पांच बातें बताई थी, कौन कौन सी, पिछले संडे में, उसमें एक था लास्ट वाली पांचवी बात थी, जो बाप का स्वभाव है वो बच्चों का स्वभाव, स्वभाव संस्कार, मनसा वाचा कर्मणा संबंध समर्क स्वभाव संस्कार, तो रियलिटी। नेक्स्ट है जे, जवाबदारी, जो भी हमको जवाबदारी मिलती है सेवा की, भले छोटी से छोटी भी मिलती है, लेकिन उस जवाबदारी को हम पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाते हैं तो सबकी दुआएं हमारे खजाने में जमा हो जाती हैं, और वो दुआएं जैसे हमारे पुरुषार्थ में उड़ान के लिए काम करती हैं, वो हम उड़ने लगते हैं। इसलिए जीवन में जो भी जवाबदारी मिलती है, कहीं से भी मिलती है, चाहे वो सेंटर से है, चाहे वो लौकिक नौकरी हम जहाँ सर्विस करते हैं वहाँ है, उसको भी हम पूरा मनोयोग से करते हैं, तो जैसे उनके मन को हम आकर्षित करते हैं, हम पूरी तरह से वहाँ जवाबदारी का अगर निर्वहन, कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, तो वहाँ भी हमको दुआएं मिलती हैं, और वो दुआएं उड़ने का साधन है, आगे बढ़ने का साधन है, दुआएं हमारी खुशी का साधन है, जैसे वो आशीर्वाद का काम करती हैं। तो कोई भी जवाबदारी को हमको पूरे मनोयोग से निभाना है। नेक्स्ट है के, खजाने, हमारे जीवन में कितने खजाने हैं वो देखना है, है ना। संडे की मुरली में बाबा ने छह खजाने बताए थे, कौन से छह खजाने थे, जो बाबा कहते व्यर्थ मत गवाओ, बचाओ, बचत का थकाता व्यर्थ को बचाओ, कौन से छह खजाने बताए थे, ये अभी लास्ट संडे की मुरली गई, हद के किनारों को छोड़ बेहद के वैरागी बनो। इसलिए जो पुराना ज्ञान है ना उसको और ही चरणी करना है, क्योंकि पुराने में और ही ताकत होती है, कहते हैं ना अचार जितना पुराना उतना अच्छा होता है, ज्ञान भी ऐसे जितना पुराना होता है उसको उतना खाएंगे तो उतना अच्छा लगेगा, है ना। अगर कोई हमको अचानक पूछ ले कि पुराने संडे की मुरली क्या है और हमको याद आ जाए तो कितनी खुशी होगी अंदर में, और याद नहीं आए तो दुख होता है अंदर, गिल्ट कॉन्शियस होती है। इसलिए रिकॉल बार बार उसको रिवाइज करना है, रिवाइज कोर्स चल रहा है हमारा, तो कम से कम जो भी संडे की मुरली है उनको बीच बीच में हमको पढ़ते रहना चाहिए। तो कौन से शेख जाने, अभी हम पढ़ के नहीं आए, तो हमको याद स्वतः आया अभी, तो शेख जाने कौन से थे, श्वास, समय, संकल्प, गुण, शक्तियां, और लास्ट वाला ज्ञान, तो वो तो शेख जाने थे। तो हमारे जीवन में सचमुच ये खजानों की संपत्ति कितनी है देखना है, बार बार खजानों से हमको खेलना है, खजानों से संपन्न बनना है, क्योंकि स्वयं खजानों का भंडार सवेरे सवेरे हमारे सामने खजाने खोल के रख देता है वो, तो उनमें से हम कितना खजाना लेते हैं। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, होशियार व्यापारी बनो, 15 तारीख की मुरली में था, होशियार व्यापारी बनो, होशियार सेल्समैन है, उसके पिछले एक दिन की मुरली में तस अच्छे थे अच्छे सेल्समैन है उन्होंने। और अच्छा सेल्समैन कौन होता है? दो गंजे को कंगी बेच दे, उसको कहते हैं अच्छा सेल्समैन, है ना। तो कोई कैसे भी आए जो ज्ञान सुनना भी नहीं चाहता है, बोले उसको हम सुनाए नहीं, लेकिन कम से कम मुस्कुरा के तो बोले उसे। जैसे हम देखते हैं ओम शांति में बहुत सारे तरह तरह की वैरायटी लोग आते हैं, कोई कहते हैं हमको सुनना नहीं है, तो हम उसको सुनाते थोड़ा नहीं है, कोई बात नहीं सुनो, जाओ उस हाथ में दिखा के ले आओ, थोड़ा मुस्कुराओ उससे अच्छी, उसके ऊपर थोड़ा हाथ रखो, थोड़ा उसको आशीर्वाद दो, बस उसको रवाना कर दो, उसकी और ही फोटो खींच दो थोड़ा, उसको लोगे हाँ अच्छा ये तो बार फोटो के लिए मना कर रहे और इसने हमको फोटो खींच दी, कम से कम थोड़ा सा तो मुस्कुराए वो, कुछ तो लेके जाए यहाँ से। तो हमको देखना है सारे दिन में हम कितने खजाने स्थूल सूक्ष्म, हमको हर तरीके से खजाने जमा करने के लिए एक तरीके ढूंढने हैं कि कैसे हम अधिक से अधिक खजाने जमा कर सकें। नेक्स्ट लवलीन स्थिति, लव, हमारा प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ते रहना चाहिए। प्यार में कमी होती है तो जीवन में खुशकी रहती है। ब्राह्मण परिवार से भी प्यार, बाबा के ज्ञान से भी प्यार, बाबा से प्यार स्वतः हो जाएगा जब बाबा के ज्ञान से प्यार होगा। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, मुरली से प्यार अर्थात मुरलीधर से प्यार। तो धीरे दिन प्रतिदिन हमारे प्यार में इजाफा होना चाहिए। जैसे हम प्यार के सागर के बच्चे हैं तो जीवन में प्यार ही प्यार दिखाई देना चाहिए। क्यों दादियों के जीवन के प्रति हम इतना आकर्षित होते हैं? क्योंकि प्यार से लबालब हैं वो, उनके पास दूसरा कुछ है ही नहीं देने के लिए, उनको क्रोध क्यों क्यों आता क्यों नहीं, क्योंकि प्यार से इतना भरपूर कर दिया। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, अमृत वेले अपने आप को प्यार से परमात्म स्नेह से इतना भर लो, इतना भर लो कि सारे दिन में दूसरे की प्यार की जरूरत ही ना पड़े। कोई देहदारी प्यार, दो देहदारी का प्यार हमको आकर्षित न कर सके, बल्कि वो देहदारी भी देह के प्यार से मुक्त हो जाए, वो उनको भी रूहानी प्यार, उनको भी रूहानी ये आकर्षण हो। तो हमको स्वयं को परमात्म प्यार से इतना भरपूर कर लेना है, और भरपूर करने का साधन एकमात्र मुरलियों के लिए बाबा कहते हैं। नेक्स्ट है एम, एम अर्थात अपने आप को माफ करना। इस मुरली में है जो अभी हमने महावाक्य सुनने, महसूसता की शक्ति। जब तक महसूसता नहीं है तब तक हम जो भी अपने अंदर दाग है उनको मिटा नहीं सकते हैं। और उनको उनके लिए बाबा ने कहा महसूस करना माफ करना ये एक ही बात है। तो स्वयं अपने आप को ही माफ करना है कि अभी तक हमने जो पुरुषार्थ जो नहीं करना चाहिए था, अर्थात जो टाइम वेस्ट किया या हमने गपशप मारी या ऐसी जो चीज़ें मर्यादाओं के खिलाफ हैं, जो हमको ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं हैं उनके ऊपर नहीं चले हैं, तो अंदर ही अंदर हमने वो भर के रखी हैं, वो कमजोरियों का संस्कार, वो कमजोरियों का चिंतन करने की आदत या वो नेगेटिविटी या वो व्यर्थ है, तो उनसे हम बहुत कुछ भर चुके हुए हैं। तो अब हमें अपने आप को भी माफ़ कर देना है। जब तक हम अपने आप को माफ़ नहीं करेंगे, रियलाइजेशन नहीं करेंगे, तब तक हमारी प्रगति नहीं होगी। तो अपने आप को माफ़ करके आगे बढ़ने का प्रयास करना है। तो स्वयं ही स्वयं को माफ़ करने की याद दिलानी। बाबा से तो हम माफ़ी लेते लेते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं इस ड्रामा में माफ़ करने की मार्जिन है ही नहीं है, लेकिन हल्का हो जाएंगे हम। इसलिए बाबा को भी सुनाना है, विधि रखी है, बाबा ने बताया ना इन महावाक्य में कि विधि रखी है बाप को सुनाने की। अगर बाप आपके दाग कमी कमजोरियों को सबके सामने अभी सुना दे तो क्या हल होगा? इसलिए विधि रखी है, बाप को सुना दो और अपने आप को माफ़ कर दो, और आगे का रास्ता क्लियर हो जाएगा, हल्के होके हम आगे चलते रहेंगे, जो बोझ है मन के ऊपर उससे हम मुक्त हो जाएंगे। तो स्वयं को माफ करना है। नेक्स्ट है हाँ जी एफ से क्या होगा, फिर फरिश्ते बन जाएंगे, और फ्री फ्रॉम ऑल बंडेज, जो भी हमारे बंधन है स्थूल सूक्ष्म उनसे छूटने का पुरुषार्थ करना है, बांधना नहीं है। नहीं तो देखते हैं अभी भी जो लौकिक है या स्थूल साधन है वहां बंधन बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, अभी समेटने का टाइम आ गया है। क्यों बंधनों को बढ़ाएं, है ना? सारे जो हमारे रिश्ते नाते हैं संबंध एक बाप से हैं, तो हमको अभी समेटना है सारे, उन सब बंधनों से मुक्त होना है। और बाबा ने इसके लिए कहा है अपने आप को ईश्वरीय सेवाओं के बंधन में बांध दो तो सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तो कहा जब भले हम लौकिक परिवार में भी रहते हैं तो उस परिवार में भी हमको ऐसे स्रोत ढूंढने हैं, सेवा के स्रोत ढूंढने हैं जो हमको बंधनों से मुक्त कर सकें, जो हमको लौकिक परिवार वाले भी ईश्वरीय सेवाओं के बंधन में बांधने का सहयोग दें। ऐसा नहीं कि वो ही हमको खींचते रहें बार बार, सूक्ष्म में कहीं ना कहीं हमारी अटैचमेंट रहती है। इसलिए परिवार में क्या होता है, अगर कोई ज्ञान में नहीं चलता है तो
तो हम उसको ज्ञान में चलाने का पुरुषार्थ करते हैं। वैसे तो बाबा ने कहा चैरिटी बिगेन्स एट होम, लेकिन कौन सी चैरिटीज बिगेन एट होम? स्वयं से। स्वयं के होम को हम ठीक रखेंगे तो दूसरे अपने आप आकर्षित होंगे। नहीं तो क्या होता है, सोचते हैं ये भी ज्ञान में चले, ये भी ज्ञान में चलते हैं, और जो जब नहीं चलते हैं तो अंदर में दुख पैदा होता है। अर्थात हमारा वहां अटैचमेंट है, मोह है उनके प्रति। छोड़ दो, अभी हमारी एक्टिविटी ऐसी है नहीं है, और वो कैसे सुनेंगे ज्ञान को, है ना। हमारे बच्चे ज्ञान में चले, हमारा पति ज्ञान में चले, कोई जरूरत नहीं है, अपने आप चलेंगे वो। जब हम अपने जीवन को ठीक करेंगे अपने आप पीछे आएंगे। हम भी किसी के पीछे क्यों जाए? मंदिर की मूर्ति किसी के पीछे जाती है? उसके पीछे पूरा संसार आ तक झुकने के लिए आता है, माथा टेकेंगे। कल बाबा ने मुरली में कहा था, कल या परसों, कि तुम्हारे आगे सब झुकेंगे, आगे माथा टेकेंगे, है ना। परसों के मुरली में था, सब आकर झुकेंगे। तो हमारा पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए कि सब हमारे पीछे आए। भले हाँ परेशानियां तो आएंगी बीच में, लोग कुछ कुछ करते कहते रहेंगे, लेकिन हमें अपने सत्य के पथ पर चलते रहना है, तो अपने आप वो आकर्षित होंगे, है ना। एक हम चलती फिरती चैतन्य मूर्ति हैं, तो प्रैक्टिकल में अभी वो गुण धारण करने हैं। जो हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण का, वो तो भविष्य में, लेकिन अनुभव तो अभी करना है सारे गुणों का। तो ऑल जो भी बंधन है, फ्री फ्रॉम ऑल बंडेज। नेक्स्ट है ज्ञान अमृत पीते रहना है, आज की मुरली में है ना। तो हमेशा बाबा कहते अंत तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीते रहना है। तो ज्ञान के अलग अलग बिंदु, जो नशे वाले, जैसे अभी बताया कि गरीब समझदार तो हैं और भाग्य है, बा गरीबी वाह। तो ऐसे महावाक्य हैं जो हमको समय पर सचेत करते हैं, जागृत करते हैं। अपना ज्ञान का तीसरा नेत्र हमको हमेशा खुला रखना है। तो ज्ञान अमृत हमको हमेशा पीते रहना है। नेक्स्ट एच, आज का वरदान क्या था? हर्षित मुख और हर्षित चित्त, और उसका आधार क्या बताया? पवित्रता। तो वो हमको बढ़ाना है ना। जो प्राप्त हर्षित मुख कब रहेगा? जब प्राप्तियों की स्मृति रहेगी। अंदर बार एक समान, जैसे अंदर हैं वैसे हमको बाहर हो। दृष्टि वृत्ति कृति, जो इसमें भी बताया है, सत्य वृत्ति सत्य दृष्टि सत्य कृति और सत्य वायुमंडल, तो हम हर्षित रह सकेंगे। जो हमको होमवर्क दिया गया है, जो बाबा हमको रोज होमवर्क देते हैं, अगर हम वो करेंगे अंदर बाहर एक होकर स्वच्छता पूर्वक पूरी निष्ठा से करेंगे, मनोयोग से करेंगे, तो वो चेहरे पर वो प्राप्ति की झलक वो हर्षित मुक्ता के रूप में दिखाई देगी। तो हमेशा हमको कैसे रहना है? हर्षित रहना है। नेक्स्ट आई, मैं और मेरेपन से मुक्त। ये हमारे जीवन में दो क्या हैं, अलाय हैं। बाबा ने वरदान में कहा था ना एक दिन स्लोगन, जो मैं और मेरेपन के अलाय से को खत्म कर देते हैं भाई कौन है? पिछली क्लास में भी यहां रिपीट कराया था, रियल गोल्ड है, रियल गोल्ड। तो मैं और मेरेपन का, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी अटैचमेंट रहती है, मेरा गुण मेरी विशेषताएं। संडे की मुरली में था, मेरा कहा तो ये भी क्या है? मैलापन है, और ये भी क्या है? महापाप है, विशेषता माया का फेरा है। तो ये तो विशेषताएं, प्रभु प्रसाद है, प्रभु की देन है, उनको अपना माना ये तो जैसे महापाप है, माया भी माया के चोर गेट हैं। तो सारे दिन में कहां मैं आता रहता है, चाहे वो चीजों के संबंध में आ रहा है या देदारियों के संबंध में आ रहा है। जो हमको गुण विशेषताएं एक प्रभु प्रसाद के रूप में मिली हैं, अगर उनको भी अपना समझते हैं, मेरी बुद्धि ठीक है, मेरी योग्यताएं दूसरों से अच्छी हैं, मेरा पुरुषार्थ अच्छा है, या मेरी धारणाएं बहुत अच्छी हैं, या मैं उनके पूरा खरा उतरता हूं, और दूसरों अपनी धारणाओं को लेकर दूसरों से अगर हम कंपैरिजन करते हैं, तो वहां भी मैं और मेरापन आरंभ हो जाता है। इसलिए जो भी हमको विशेषताएं मिली हैं उनका हमको वर्णन करने की जरूरत नहीं है, वो तो प्रैक्टिकल में हमारे चरित्र से दिखाई देंगे। तो मैं और मेरेपन से मुक्त होने का भी पुरुषार्थ करना है। जैसे एक बार यहाँ क्लास भी कराई थी कि मैं आज सारे दिन में हम पुरुषार्थ करेंगे, सभी को बताया गया था कि आज मैं और मेरा नहीं कहेंगे, और उसमें एग्जाम्पल दिया था दादी जी का, बड़े दादी जी का। क्या एग्जाम्पल दिया दादी जी का? कि दादी अपने आप को हमेशा मैं नहीं कहती थी, दादी कहती है, दादी कहती है। तो यहाँ एक दिन बताया था उसी दिन में कि आज पुरुषार्थ करेंगे कि जैसे ये चीज मेरी है, ये नहीं बोलना, तो क्या कहेंगे इसको? इसको क्या कहेंगे फिर? तो इसमें मैं और मेरा पन नहीं लाना है। तो जैसे यहां जिसने क्लास कराई थी उसका मोबाइल रह गया इधर लास्ट में, तो हमने पूछा है मोबाइल किसका, बोला मेरा है। तो माना हमारी कॉन्शियस में कितना गहरा चला गया है, अभी हम क्लास कर रहे थे अभी हम भूल जाते हैं। तो ये तो सबके साथ होता ही होता है। तो कितना सूक्ष्म में गहरे तल पर वो बैठ गई चीज, वो तुम में और मेरे फिर इनका इससे फ्री होने का बहुत गहरा पुरुषार्थ है।
नेक्स्ट है,
हाँ क्वेश्चन, प्रश्नों से चित्त भरा नहीं होना चाहिए है? अगर प्रश्नों से चित्त भरा होगा तो हम प्रसन्न नहीं रहे। और प्रश्न कब उठते हैं, जब हम क्या भूल जाते हैं, ड्रामा को भूल जाते हैं, ये क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है। जब बाबा ने हम सबको हर चीज बता दी है, क्लियर बता दी है, क्यों क्या कैसे कब, ये सब चीजें तो आएंगी आएंगी जीवन में, लेकिन हमको क्या करना है। हाँ अगर हम उस पर थोड़ा फोकस देंगे तो हम सारे प्रश्नों से मुक्त हो जाएंगे, नहीं तो प्रश्नों के जंजाल में हमारा जीवन ऐसे व्यतीत हो जाएगा, सारी शक्ति एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, दूसरों को देखते रहेंगे। जबकि हमको बताया कि हर एक का पार्ट अपना अपना है, ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है, कल्याणकारी है, इसमें किसी का कल्याण नहीं हो सकता है, ये हू रिपीट हो रहा है। उसके बावजूद भी अगर हमारे मन में प्रश्न उठते हैं तो प्रश्नों से हमको परे रहना है, नहीं तो प्रश्नों को पकड़ा तो लड़ाई झगड़े चालू हो जाएंगे। सामने वाले अगर हमने कुछ कह दिया, हमको किसी ने कुछ कह दिया और हम उस बात को पकड़ लिया तो लड़ाई झगड़ा वहीं चालू हो जाएगा, भले वो बाहर से नहीं स्थूल से नहीं हो रहा लेकिन अंतर द्वंद्व चालू हो जाता है, अंतर में कुरुक्षेत्र का मैदान हमारा यहीं बन जाता है। और वो एक संकल्प हमारी सारी एनर्जी को वेस्ट करता है, हमारी नींद को हराम कर देता है, सारे दिन को ऐसे ले जाता है। एक व्यक्ति अगर थोड़ा से भी कुछ कह के चला गया, कहने वाला तो चला गया लेकिन मन में हमने उसको भर के रखा है, वो चित्त जो शिकायतों से भरा हुआ है एक्टिव कर देता है, लेकिन एक्टिव किस तरफ, दूसरी तरफ ले जाए। हाँ अगर हमारे में पॉजिटिव एनर्जी है, अगर हमने चिंतन मनन किया अच्छी तरह से, तो वो ही संकल्प हमारे पुरुषार्थ का भी हिस्सा बन जाएगा, पुरुषार्थ को आगे बढ़ा देगा, वो कांटा ही हमारे जीवन में फूल उगाने का काम करेगा। जैसे बाबा क्या कहते, खाद होगी है तभी तो गुलाब का फूल खुशबू देगा ना, तो वो हमारा एटीट्यूड कैसा है कि सामने वाला जो बोलता है उसको हम कैसे रिसीव करते हैं, उस पर कैसे नजर रखते हैं।
तो नेक्स्ट है पी,
पी अर्थात प्योरिटी, कल की मुरली में था सच्चे ब्राह्मण अर्थात प्योर, कल की मुरली में था कि नहीं, तो आज का स्लोगन है संसार का सबसे श्रेष्ठ बल है पवित्रता का बल, सामने लिखा हुआ है। अब वो जो लिखा हुआ ना वो सा इधर लिखा होना चाहिए। वो कहाँ लिखा हुआ, गेट के सामने लिखा हुआ, मेन फ्रंट पेज पर, फ्रंट पर। तो पवित्रता का बल, इसको हमको दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहना है। इसलिए बाबा ने जो इस हमको महावाक्य में जो बाबा के पढ़े गए हैं अभी, तो इसमें जो हमारी अंतिम स्थिति संपूर्ण स्टेज उस तक पहुंचने के लिए पवित्रता का जो फाउंडेशन है ये हमारा बहुत मजबूत होना चाहिए। इसी के लिए तो बाबा ने अपना एक ब्रह्मा ने इस एक मुरली में, सत्यता की मुरली में एग्जाम्पल दिया है। ब्रह्मा बाबा ने इस मामले में कोई भी ढिलाई नहीं बरती। संसार में क्या कहा, भले समाज वालों ने कहा कि बाबा थोड़ी थोड़ी आप ऐसे को थोड़ा थोड़ा पवित्र हो, इसमें बाबा ने कोई ढील नहीं दी, सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। तो ये हमारा मुख्य सिद्धांत है, मुख्य हमारा फाउंडेशन है, मुख्य धारणा है हमारी, ये जैसे श्वास है सारे पुरुषार्थ की आधारशिला है। तो इस पर हमको किसी भी सूरत में समझौता नहीं करना है, पवित्रता का बल दिन प्रतिदिन प्रखर होते रहना चाहिए। और उसके लिए बहुत सारी बातें हम सुनते हैं पवित्रता के बारे में, कैसे उसको बढ़ाना है, मुरलियां पढ़ो, क्लासेस सुनो, अभ्यास करो, भोजन पर थोड़ा अटेंशन रखो, तो हमारा पवित्रता का बल दिन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा।
नेक्स्ट है
ओ, ऑलवेज ओके, हमेशा ओके रहना। शाम को जब हम चार्ट लिखते हैं तो सारे दिन का पुरुषार्थ करके दिल से आवाज निकलनी चाहिए, ओके लंबा चौड़ा नहीं। बाबा कितने लंबा चौड़ा पत्र लिखते हैं तो बाबा कहाँ पढ़ेंगे, और अभी पढ़ने वाला कौन है, अभी तो सूक्ष्म में बाबा देखते हैं। और वो संकल्प हम करते हैं लिखने से पहले संकल्प पहुंच जाता है। तो ऑलवेज हमको मन में रखना कि मैं हमेशा ओके हूँ, नेगेटिव संकल्प नहीं डालने, नहीं तो हम अपनी कमी कमजोरियों का, अपने दुखों का वर्णन करते रहते हैं, अपनी जो चिंताएं हैं या कोई कुछ कह रहा है उसका वर्णन करते हैं, छोड़ दो चक्कर को, अभी ऑलवेज ओके उस स्टेज पर स्थित रहना हमको।
नेक्स्ट
एन, पूरा नष्टो मोह बनना है, कहीं ना कहीं हमारी मोह की रगें जुटी रहती हैं, चाहे वो स्थूल धन से है, चाहे लौकिक संबंधों से है, या और बहुत सारी अपने ही स्वभाव संस्कार से, अपने ही स्वभाव संस्कार से मोह हो जाता है, अपनी विशेषताओं से मोह हो जाता है, तो उनसे भी हमको नष्टो मोह बनना है, जो हमारी अंतिम स्थिति है नष्टो मोह निरहंकारिता की। अहंकार नहीं होना चाहिए, नहीं तो जैसे जैसे ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हैं अहंकार आने के बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि सबसे मान सम्मान मिलेगा। कल था ना मुरली में, स्लोगन क्या था कल का? नहीं कल नहीं, परसों का, प्रशंसा वाला था ना, तो प्रशंसा, हाँ प्रसन्नचित रहना है तो प्रशंसा स्वीकार नहीं करनी है, उसकी इच्छा नहीं रखनी है। तो हमको वो नहीं करना है कि प्रशंसा के हम दूसरों ऐसे सोचें, प्रशंसा तो इस ज्ञान मार्ग में होती होती है, ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं जिसकी प्रशंसा नहीं हो, लेकिन अगर हमने स्वीकार की तो हमारी स्थिति दिन प्रतिदिन गिरती जाएगी। इसलिए हमेशा हमको क्या रहना है, नष्ट मोह। ई से क्या है, ईमानदार, अपने साथ भी पूरा ईमानदार, वफादार, फरमानदार जो बाबा कहते हैं, परिवार के साथ भी, अपने पुरुषार्थ से भी, सेवा से भी ईमानदार, परिवार से भी, बाबा से भी, और लौकिक परिवार से भी ईमानदार। यहाँ लौकिक में जो हम सर्विस करते हैं वहाँ भी ईमानदार, क्योंकि आज सारा संसार भ्रष्टाचार पर ही अभी टिका हुआ है, दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार के जंजाल में संसार उलझता जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि हमारा भी उसी दिशा में जीवन जाता रहे, तो हमको भी ईमानदार वफादार रहना स्वयं के। नेक्स्ट डी, डी अर्थात डिसिप्लिन, अनुशासन, डेडिकेशन, बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती हैं। तो हम अपना अनुशासित दिनचर्या हमारी कैसी है, उस पर हम कितना खरा होता है, सवेरे से लेकर शाम तक। कई दफा हम कहते हैं सामान्य दिनचर्या में अगर हम एक्यूरेट रहे ना तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा है ना। आधा घंटा भी हम योग में बैठे, आधा घंटा फुल चार्ज हुए तो कितनी बड़ी बात है वो, लेकिन आधे घंटे में अगर डेढ़ घंटा हम योग में बैठे और आधा घंटा मन बुद्धि भटकी रहा है, एक घंटा भटक रहा है और आधा घंटा एकाग्र हुआ और वो भी थोड़ा बहुत ही हुआ, थोड़ा पुरुषार्थ, कम मेहनत ज्यादा प्राप्ति, जो बाबा ने मुरली में कल भी सुनाया था देवेंद्र भाई ने, यहाँ कम मेहनत ज्यादा प्राप्ति होनी चाहिए, और उस प्राप्ति के आधार पर हमारी निरंतरता बढ़ती जाएगी। और योग कोई लगाने का ऐसा नहीं किसी विशेष स्थान पर हमको योग लगाना है, योग तो हमारा आंख खुलते योग चालू हो जाता है। नहीं तो कई बार देखते हैं हम उठते हैं भाग भाग कर आ रहे हैं बाबा के कमरे में, आकर्षण अच्छी चीज है, वो भी एक होना चाहिए, लेकिन योग तो हमारा लगा हुआ वास्तव में, आंख खुली नहीं और बाबा के कितने उठते बोलो गुड मॉर्निंग। अब जहां से गुड मॉर्निंग जिसके साथ किए तो कौन याद आ रहा है, तो वो तो निरंतरता हमारी होगी, चलते फिरते उठते बैठते हम निरंतर योगी हैं, हम कोई खंडित योगी नहीं है, निरंतर योगी है। तो कहां थे, अनुशासन, डिसिप्लिन, हर बात में डिसिप्लिन चाहिए, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में हर बात में डिसिप्लिन। नेक्स्ट सी अर्थात कंपनी, एक बाप की कंपनी में रहना है, उसकी कैनोपी, उसकी छत्रछाया में रहना है ना। 15 तारीख का प्रधान था, कौन था प्रधान था, हाँ कंपनी और कंपेनियन, उसमें था साक्षी दृष्टा है ना, बाप बाप के साथ रहो और साक्षी स्थिति की स्टेज पर स्थित रहो और बाप को अपना कंपेनियन बनाओ, उसकी कंपनी में रहो, क्योंकि संघ का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। सारे दिन में जिस के भी हम संघ में आते हैं उसका इफेक्ट हमारे ऊपर अवश्य पड़ता है, भले हम उसके पास दो मिनट खड़े रहते हैं, आग के पास दो मिनट खड़ा हो जाए तो उसका सेक तो हमको लगेगा, कूलर के एसी के पास में खड़ा हो जाएंगे उसका सेक भी लेगा। तो इसी तरह जो भी व्यक्ति हमारे आसपास में बैठे हैं तो उनके संकल्पों का प्रभाव हमारे ऊपर अवश्य पड़ता है। अगर हमारी स्थिति शक्तिशाली नहीं है, कमजोर है, व्यर्थ से भरी हुई है, नेगेटिव संकल्प है, और बाजू वाला भी नेगेटिव संकल्प वाला बैठा है, तो उसके नेगेटिव संकल्प भी हमको प्रभावित करेंगे और वो योग नहीं लगने देंगे। इसलिए कई बार योग के स्थान में अगर योग नहीं लगता, स्थान चेंज कर दो, क्योंकि वहां हमारी स्थिति स्वयं की भी कमजोर है और जो पास वाला बैठा हो उसकी भी स्थिति कमजोर है, इसलिए योग नहीं लग रहा है। नहीं तो कई बार हम पहले से तैयार, अपनी तैयारी तो करके जाते हैं, बैठते हैं योग में, लेकिन योग लगता नहीं उस समय, तो कहीं ना कहीं उस स्थान को भी चेंज कर दो थोड़ा। तो क्या करना है, अपने आप को कंपनी में रहना है या चेंज भी करना है, तो बाबा की कैनोपी में भी और कंपनी में भी रहना है। नेक्स्ट बी अर्थात बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्र नहीं करना है, किस चीज का फिक्र, जब बेफिक्र बादशाह बनाने के बाबा ने सब तरीके बता दिए तो फिक्र किस चीज का, वह हाँ पुरुषार्थ का फिक्र तो जरूर रहना चाहिए। तो बेफिक्र बादशाह, बेहद के बादशाह, बेदाग जीवन होना चाहिए, जो बाबा ने मुरली में कहा बिन कौड़ी बादशाह, तो बेताज बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, बेहद के बादशाह, सात प्रकार के बादशाह हैं। तो जो बाबा ने बताया कि दाग बहुत लगे हो जीवन में, तो हमारा जीवन बेदाग जीवन होना चाहिए, है ना, लंबे समय के पुरुषार्थ करने के बाद, नहीं तो सफेद कपड़े पर भी वो थोड़ा दाग ही दिखाई देगा, सफेद कपड़े पूरे नहीं दिखाई देंगे, वो दाग ही दिखाई देगा हमारा। तो बेदाग जीवन, बेफिक्र बादशाह जीवन। नेक्स्ट है अभ्यास, 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 ये अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो इसमें दो चीजें बताई, संपूर्णता की स्टेज फरिश्ता स्थिति और आत्मिक स्थिति। तो लंबे समय के बिना अभ्यास के ये चीजें हमारे जीवन में आने वाली नहीं है और इसका पहले से अभ्यास करना है। जैसे हमने पढ़ा ये, तो तभी से हमारे अभ्यास ने तो लंबे समय से जैसे धुंधला था वो अभ्यास, तो ये अभ्यास हमको करना है। चलते फिरते मैं फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हूँ, और वास्तव में हमारा असली स्वरूप तो वही है ना। ये तो देह विनाश हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर से जो सटल बॉडी है जो निकल कर जाएगी अगले जन्म में, वो तो फरिश्ता रूपी है। और जो वो आत्मिक स्थिति है, वो लंबे समय से अशरीरीपन का अभ्यास, आत्मवानी स्थिति का अभ्यास। आजी बाबा ने मूल्य में कहा कि देवान में तो लंबे समय से रहे, लेकिन अभी आत्मवानी स्थिति में रहो। तो देही विदेही अशरीरी स्थिति, निराकार स्थिति, विद्रूप स्थिति, वो आत्मवानी स्थिति में लंबे समय से अभ्यास करना। चलते प्रति जैसे मैं इस बॉडी से निकलकर अलग से चल रहा हूँ, या यहाँ बैठे बैठे मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ, बाबा के कमरे में बैठा हूँ, यहाँ बैठे बैठे जैसे शांति संपर्क बैठे हैं, यहाँ बैठे बैठे सूक्ष्म बतन बैठा हुआ, इस स्थूल को जैसे वहां अनुभव करना है, वो स्थूल ही सूक्ष्म में परिवर्तन हो जाएगा। तो लंबे समय का ये अभ्यास हमको सूक्ष्म स्टेज की तरफ ले जाएगा, हमारा जो ओरिजिनल संपूर्ण स्टेज है उस तरफ ले जाएगा। तो बहुत सारी बातें हैं जीवन में हमको अप्लाई करनी है, तो इनको रिवाइज करने के बजाय हम इनको बाबा के महावाक्यों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अब संपूर्ण स्थिति की स्टेज व संपूर्ण परिणाम का समय नजदीक आ रहा है। रिजल्ट आउट बाप दादा मुख द्वारा नहीं करेंगे या कोई कागज व बोर्ड पर नंबर नहीं लिखेंगे, लेकिन रिजल्ट आउट कैसे होगी, स्वयं स्वयं ही स्वयं को अपनी योग्यताओं प्रमाण अपने अपने निश्चित नंबर के योग्य समझेंगे और सिद्ध करेंगे। है ना, जैसे अगर हमको कोई काम दिया जाता है और हमको आता ही नहीं है, योग्यता नहीं, तो अपने आप कहेंगे नहीं ये मैं नहीं कर सकता। अंत में भी ऐसे होगा, सीट हमारे सामने होगी और बाबा बोलेंगे बैठो इस पर, और हम खुद मना करना पड़ेगा, हमको कहेंगे बाबा नहीं ये हमारे में योग्यता नहीं, तो बाबा नहीं रिजल्ट देगा हमको, हम खुद ही दे देंगे वो। तो स्वयं ही स्वयं को अपनी योग्यताओं प्रमाण अपने अपने निश्चित नंबर के योग्य समझेंगे और सिद्ध करेंगे। ऑटोमेटिकली उनके मुख से स्वयं के प्रति फाइनल रिजल्ट के नंबर ना सोचते हुए भी उनके मुख से सुनाई देंगे और चलन से दिखाई देंगे। अब तक तो रायल पुरुषार्थियों की रायल भाषा चलती है कि चलता है, हो जाएगा, कौन देख रहा है, लेकिन थोड़े समय में रायल भाषा रियल हो जाएगी, फिर चलेगा नहीं, फिर चिल्लाना पड़ेगा। जैसे कि कल पहले का गायन है रायल पुरुषार्थियों का, कितना भी स्वयं को बनाने का पुरुषार्थ करें, लेकिन स्वयं सत्यता रूपी दर्पण के आगे रायल भी रियल दिखाई देगा, है ना। जैसे कई बार अब ऐसे देखता है, देखने में भी आता है कि जो हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं और वो स्टेज पर हम कह रहे हैं कि हम बड़े तपस्वी हैं, जीवन हमारा बाबा ने तपस्वी बना दिया, और जीवन में वो दिखाई नहीं देता है, तो जैसे हंसी आती है सचमुच, लेकिन वो रियल सामने प्रैक्टिकल में दिखाई देगा एक दिन। वो हमारी कोई बाहर वेशभूषा से नहीं, वेशभूषा से हम जितना मर्जी अपने आप को सजा ले सवार ले, लेकिन बाबा ने कहा जब ये शीश महल बनेंगे तो स्वयं रियल जो रायल रियल हो जाएगा। तो जैसे कि कल पहले का गायन है रायल पुरुषार्थियों का, कितना भी स्वयं को बनाने का पुरुषार्थ करें, लेकिन सत्यता रूपी दर्पण के आगे रायल भी रियल दिखाई देगा। तो आगे चलकर ऐसे सत्य बोल, सत्य वृत्ति, सत्य दृष्टि, सत्य वायुमंडल, सत्य वातावरण, सत्य संगठन सिद्ध होगा, प्रसिद्ध दिखाई देगा, अर्थात ब्राह्मण परिवार एक शीश महल बन जाएगा। ऐसी फाइनल रिजल्ट ऑटोमेटिकली आउट होगी। अभी तो बड़े बड़े दाग भी छुपाने से छिप जाते हैं, क्योंकि अभी शीश महल नहीं बना है जो कि चारों ओर के दाग स्पष्ट दिखाई दे जावे। जब किनारा कर लेते हो तो दाग छिप जाते, अर्थात पाप दर्पण के आगे स्वयं को लाने से किनारा कर छिप जाते हैं। छिपता नहीं है, लेकिन किनारा कर और छिपा हुआ समझ स्वयं को खुश कर लेते हैं। बाप भी बच्चों का कल्याणकारी बन अनजान बन जाते हैं, जैसे कि जानते ही नहीं। अगर बाप कह दे कि मैं जानता हूं कि ये दाग इतने समय से इस रूप से हैं, तो सुनाने वाले का क्या स्वरूप होगा? सुनाना चाहते भी मुख बंद, सुनाने वाला नहीं सुना पाएगा, क्योंकि सुनाने की विधि रखी हुई है। बाप जबकि जानते भी हैं तो भी सुनते क्यों हैं? क्योंकि स्वयं द्वारा किए गए कर्म व संकल्प स्वयं वर्णन करेंगे तो ही महसूसता की सीढ़ी पर पांव रखेंगे। महसूस करना या अफसोस करना या माफी लेना बात एक ही हो जाती है, इसलिए सुनाने की अर्थात स्वयं को हल्का बनाने की या परिवर्तन करने की विधि बनाई गई है। इस विधि से पापों की वृद्धि कम हो जाती है, इसलिए अगर शीश महल बनने के बाद स्वयं को स्पष्ट देख करके स्पष्ट किया तो रिजल्ट क्या होगी जानते हो। बाप दादा भी ड्रामा प्रमाण उन आत्माओं को स्पष्ट चैलेंज देंगे तो फिर क्या करेंगे। इसलिए जब महसूसता के आधार पर स्पष्ट हो अर्थात बोझ से स्वयं को हल्का करो तब ही डबल लाइट स्वरूप अर्थात फरिश्ता व आत्मिक स्थिति स्वरूप बन सकेंगे। ओम शांति।
होती है।